ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में सौर्य एयरलाइंस विमान दुर्घटना में हुई 18 लोगों की मौत। दुर्घटना की जांच करने के लिए सरकार ने किया 5 सदस्यीय जांच आयोग का गठन। बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी आपदाओं में लापता हुए लोगों के परिजनों को राहत देने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। चूंकि बौद्ध धर्म विज्ञान पर आधारित है इसलिए इसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। और इथियोपिया में भीषण भूस्खलन में दबने से कम 229 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सौर्य एयरलाइंस का विमान आज त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसमें सवार एक नाबालिग सहित 18 लोगों की मौत हो गई। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि काठमांडू से पोखरा तक 19 यात्रियों को लेकर जा रही विमान रनवे के पास खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार 18 लोगों की मौत हो गई और विमान के पायलट को बचा लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे में विमान के सहचालक सुशांत कटवाल सहित अमित मान महर्जन, सागर आचार्य, दिलीप वर्मा, मनुराज शर्मा, आशीवन निरौला, सुदीप लाल जोशी, सर्वेश मरासिनी, श्याम विन्दुकार, नवराज आले, राजा राम आचार्य, प्रीजा खतिवड़ा, अधीराज शर्मा, उद्धव पुरी, यज्ञ प्रसाद पौड़ेल, संतोष महतो, पुण्य रत्न शाही और एक यमनी नागरिक आरिफ रेडा की मौत हो गई। बता दें कि मृतक अधीराज शर्मा एक नाबालिग है। हादसे में गंभीर घायल हुए विमान के चालक मानीश रत्न शाक्य का काठमांडू मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल सीना मंगल में इलाज चल रहा है। ये जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दी। सभी मृतकों के शव का पोस्टमार्टम त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता हंसराज पांडे ने बताया कि सभी मृतकों का पोस्टमार्टम और अन्य तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही शव परिजनों को सौंपने की तैयारी की गई है और इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। विमान दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और हवाई अड्डे के उच्च अधिकारियों से घटना के विषय में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ओली के साथ गृहमंत्री रमेश लेखक और संस्कृति पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पांडे भी घटना की जानकारी लेने हवाई अड्डे पहुंचे थे। पर्यटन मंत्री पांडे ने हवाई अड्डे के उच्च अधिकारियों की ब्रीफिंग के बाद मीडियाकर्मियों से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि प्रारंभिक जानकारी मिली है कि विमान उड़ान भरते समय रनवे के पास एक कंटेनर से टकरा गया और दुर्घटना हुई, लेकिन सत्य का पता लगाना आवश्यक है और विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री पांडे ने कहा कि हालांकि जहाज थोड़ा पुराना था लेकिन ये तकनीकी रूप से उड़ने योग्य स्थिति में था। पर्यटन मंत्री पांडे ने कहा कि पायलट को जीवित बचा लिया जा सका क्योंकि सभी बचाव तंत्र तुरंत जुट गए थे, लेकिन विमान में भीषण आग लगने के कारण सभी को समय पर सुरक्षित नहीं बचाया जा सका। सौर्य एयरलाइंस के विमान हादसे की विस्तृत जांच के लिए सरकार ने जांच आयोग का गठन किया है। सरकार के प्रवक्ता और संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंह दरबार में हुई मंत्रिपरिषद की आपात बैठक में नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक रतीश चंद्रलाल सुमन के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय जांच आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि जांच आयोग को घटना की विस्तृत जांच करनी होगी और भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली सिफारिशों के साथ 45 दिनों के भीतर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं मंत्रिपरिषद की आपात बैठक में विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और घायल पायलट के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एयरलाइंस कंपनियों को अनिवार्य तकनीकी परीक्षण करना होगा और नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण उन पर कड़ी निगरानी रखेगा। सरकार ने शोक की इस घड़ी में गुरुवार यानी कल श्रावण 10 गते को राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाने का फैसला किया है। सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण लापता हुए लोगों के परिवारों को राहत राशि देने का फैसला किया है। आज विभिन्न तिथियों पर आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि उन लोगों के परिवार को राहत राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जो बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण गायब हो गए और घटना के 10 दिनों के बाद भी नहीं मिले हैं। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में विक्रम संवत 2082 साल आषाढ़ अंत तक नेपाल को सड़क पर रहने वाले बच्चों से मुक्त करने और कीर्तिपुर क्रिकेट ग्राउंड में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार फ्लड लाइट और पैराफिट की स्थापना को 300 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में समृद्ध परियोजना के लिए प्रतिबंध के लिए विश्व बैंक से 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त अनुदान सहायता की स्वीकृति के संबंध में एक वार्ता दल के गठन सहित निर्णय किए गए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को संस्थागत करते हुए समृद्ध नेपाल के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करने का आग्रह किया है। आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में भीमसेन थापा मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित भीमसेन थापा पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि विभिन्न जातीय संस्कृतियों और परम्पराओं वाले नेपाल को राष्ट्रीय एकता में विलय करके आगे बढ़ना चाहिए। ये याद करते हुए कि नेपाल की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए भीमसेन थापा का योगदान महत्वपूर्ण था, राष्ट्रपति पौड़ेल ने यह भी कहा कि नेपाल के इतिहास का वैश्वीकरण करके ये संदेश फैलाना महत्वपूर्ण है कि नेपाल हमेशा स्वतंत्र रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति पौड़ेल ने राष्ट्रीय विभूति भीमसेन थापा पुरस्कार 2081 से मृगेन्द्र समझनाथ चिकित्सा गुठी के संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ चिकित्सक डॉ मृगेन्द्र राज पांडे को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि बौद्ध धर्म को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि ये विज्ञान पर आधारित है। नेपाल मंडल लिटरेचर कल्चर ट्रस्ट द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने स्पष्ट किया कि चूंकि नेपाल एक सामाजिक धार्मिक और प्राकृतिक रूप से विविध देश है, इसलिए सरकार इस तथ्य को स्वीकार करेगी कि नेपाल सभी नेपालियों के लिए समान है। संसदीय सुनवाई समिति ने आज चुनाव आयुक्त के रूप में प्रस्तावित कृष्णमान प्रधान पर सुनवाई की। समिति के अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवरा ने बताया कि प्रस्तावित आयुक्त प्रधान को चुनाव आयुक्त के रूप में मंजूरी दी जाए या नहीं, इस विषय में समिति की अगली बैठक में तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चूंकि प्रस्तावित आयुक्त प्रधान के खिलाफ यौन शोषण के आरोप थे, इसलिए उनका नैतिक चरित्र ऊंचा नहीं पाया गया है। प्रस्तावित आयुक्त प्रधान के खिलाफ संसदीय सुनवाई समिति को सौंपी गई सभी 4 शिकायतों में यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देववा ने कहा है कि नेपाल और नेपालियों को केंद्र में रखकर मंत्रालय नीतियां बनाएगा। आज हुई अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं पर्यटन समिति की बैठक में परराष्ट्र मंत्री डॉ देववा ने कहा कि चीनी परियोजना बीआरआई के संचालन और क्रियान्वयन को लेकर चर्चा अभी भी जारी है। परराष्ट्र मंत्री डॉ देववा ने बताया कि रूस यूक्रेन युद्ध के क्रम में 150 स्वदेश वापस लौटे हैं, वहीं 223 लोगों के परिवारों ने उद्धार के लिए निवेदन किया है और 161 घायलों के बचाव के लिए अपील की गई है। इसी तरह सांसदों ने कुवैत, कतर, दुबई और अन्य देशों में नेपाली महिलाओं की तस्करी होने और ऐसी अमानवीय घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का सुझाव दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इथियोपिया के गोफा के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद रविवार शाम और सोमवार सुबह भूस्खलन की 2 घटनाएं हुई हैं। एक स्थानीय अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि बचाव दल ने अब तक दक्षिणी एथियोपिया में हुए दो भूस्खलनों में मारे गए 229 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है। मृतकों में वयस्क और बच्चे दोनों शामिल हैं और जिंदा बचाए गए 10 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारी बारिश के कारण रविवार को भूस्खलन हुआ था। सोमवार को जब पुलिस अधिकारी और आसपास के लोग खोज और बचाव कार्य में लगे थे तभी दूसरा भूस्खलन हुआ। गोफा आपदा प्रबंधन के प्रमुख मार्कोश मोलसे ने कहा है कि अब तक 229 शव बरामद किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि जिंदा बचे लोगों की तलाश तेजी से जारी है लेकिन मृतकों की संख्या अभी बढ़ सकती है। गोफा दक्षिणी इथियोपिया राज्य का हिस्सा है। ये राजधानी अदीस अबाबा से लगभग 320 किलोमीटर दक्षिणी पश्चिम की ओर स्थित है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में सौर्य एयरलाइंस विमान दुर्घटना में हुई 18 लोगों की मौत। दुर्घटना की जांच करने के लिए सरकार ने किया 5 सदस्यीय जांच आयोग का गठन। बाढ़ व भूस्खलन जैसी आपदाओं में लापता हुए लोगों के परिजनों को राहत देने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। चूंकि बौद्ध धर्म विज्ञान पर आधारित है इसलिए इसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। और इथियोपिया में भीषण भूस्खलन में दबने से कम 229 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।